सबसे सूक्ष्म पुरुषार्थ कौन सा है? माताएं बताएंगी। सूक्ष्म पुरुषार्थ वो सेवा हुई। बहुत सारे हैं, बोलो। देखिए अभिमानी बनना, बोलते जाओ, उनमें से एक पे क्लास करेंगे आज। अंतर्मुखता, मैं और मेरे से मुक्त, कहने बोले स्वयं का परिवर्तन। सबसे सूक्ष्म पुरुषार्थ ये सब सूक्ष्म है। देह अभिमानी बनना तो सबसे सूक्ष्म और अच्छा पुरुषार्थ है, मैं और मेरे से मुक्त होना। इससे जीवन निर्मल बन जाता है, बहुत हल्कापन आ जाता है। हम आज इस पे चर्चा करेंगे। मैं सुना रहा था कि मेरे मन में एक बात गूंज रही है आज, उसमें एक और जोड़ेंगे दो बातें। जैसे बाबा हमारे सामने खड़ा होकर कह रहा है, जहाँ मेरापन है वहाँ मेरा कोई स्थान नहीं, समझिए ना। जहाँ मेरापन है वहाँ मैं नहीं, ये तो बहुत अच्छा बजाया, बहुत अच्छे शब्द है। सब सौंप लो, सब तेरा कर दो तो सब तेरा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा सब कुछ। समर्पण भाव बहुत बड़ी चीज है। मैं और मेरे को अर्पित करें हम, मैंपन से बिल्कुल मुक्त होते चलें, तो मेरे बाबा का स्थान हमारे पास हो जाएगा, हमारे दिल में हो जाएगा। जिस मन में मैंपन भरा हुआ हो वहाँ बाबा की याद नहीं रहती। याद क्यों कठिन होती है? उसका एक ये भी कारण है कि मैं और मेरा बहुत है, इससे हमें मुक्त होना है। हम इस पर सूक्ष्मता से चर्चा करेंगे। दूसरी बात मैं केवल बताऊंगा, उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। जो आत्माएं बहुत पवित्र हैं, उनके हर संकल्प को पूर्ण करने में ये संपूर्ण प्रकृति लग जाती है। प्रकृति तैयार रहती है उन आत्माओं के सभी संकल्प पूर्ण करने में, उन्हें सब कुछ देने में जो संपूर्ण पवित्र हैं। विनाश काल में भी जब किसी को कुछ नहीं मिलेगा, प्रकृति पवित्र आत्माओं को सब कुछ देगी, अन्न भी पानी भी सब्जी भी सब, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं और मेरा, हमें मैंपन से मुक्त होना ही है, होना है। सब संकल्प कर ले, मुझे मैंपन से मुक्त होना ही है। अब लिस्ट बनाएंगे, मैं कौन कौन से मैं आते हैं, क्या क्या मेरा आता है, सभी चिंतन करेंगे। इसलिए जो माताएं आगे आ सकती हो चिंतन करने, वो वेलकम, आ जाओ आगे। बोलो भाई, बताएं तब तक। मैं इंचार्ज हूँ। इससे क्या होता है? अभिमान बढ़ने लगता है, वाणी बदल जाती है, व्यवहार बदल जाता है। इंचार्ज पर यदि अहम में बदल जाए तो इंचार्ज दूसरों को भी टेंशन देंगे, खुद भी टेंशन में रहेंगे। कहेंगे बहुत काम है, कोई मेरी सुनता ही नहीं, कोई नहीं, सब पता नहीं क्या कर रहे हैं। इंचार्ज का नफा टेंशन को जन्म देता है। तो एक हुआ, तुमने पहले ही बहुत बड़ी बात कर दी, मैं इंचार्ज हूँ। बोलो मैं बुद्धिमान हूँ। जिसको ये नफा रहता है उसको क्या नहीं मिलेगा? ईश्वरीय बुद्धि प्राप्त नहीं होगी। संगम युग पर हमें क्या मिल रहा है? ईश्वरीय बुद्धि। सुने ना बाबा के सब, तुम्हारी बुद्धि अब ईश्वरीय बुद्धि बन गई है। माताएं सोचते रहे, आपसे पूछा जाएगा, बोलो किसी को अंकल, मैं बहुत अच्छा सेवाधारी हूँ, मैं बहुत अच्छी सेवा करती हूँ, मैं बहुत अच्छा समझाती हूँ। तो क्या निकल गया बीच से? बाबा, बाबा की देन है वो खत्म हो गया। तो ये बात भी हमारी सेवाओं पर असर डालेगी। जिनकी हम सेवा करेंगे अगर वो ज्ञान में आ भी गए तो वो भी यही कहेंगे, हम बहुत अच्छी सेवा करते हैं। बीज डालने वाले जैसे होंगे, बीज के गुण और अवगुण उनके वृक्ष में आ जाते हैं। भाई बताए अब और मैं हरी बोलो है? मेरे ये काम मेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता, अहम बढ़ जाता है, दूसरों को नीची दृष्टि से देखने लगते हैं। और बोलो, हाँ सुशील भाई बोलो। अरे मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत अनुभवी हूँ, तुम्हें क्या पता मैं 40 साल से ज्ञान में हूँ, तुमने क्या देखा? तुमने जो देखा वो तुमने बिल्कुल नहीं देखा, तुम तो कल के बच्चे हो। बोलते भी है ऐसे कई लोग, संतों में तो बड़ा नशा रहता है, मैं पुराना हूँ तो मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मेरी राय लेनी चाहिए, मुझे पूछा जाना चाहिए। तो ये एक ऐसी माया हो जाती है जो मनुष्य को व्यर्थ संकल्पों के चक्रव्यूह में उलझा देती है। इसे मुक्त, ठीक है, और आगे चलो। सोच वाले बताओ, मैं जो मैं कहता हूँ वही होना चाहिए, तुमने मेरे बिना पूछे ये अच्छा काम क्यों किया? अच्छा मैं बोल रहा हूँ, कई तो ऐसा भी कह देते हैं, तुमने मेरे बिना पूछे ये अच्छा काम क्यों किया? तो ये भी मैंपन है, इससे आत्माएं दूर जाने लगते। पीछे वाले भाई बताए, बोलो जोर से बोलेंगे, नहीं तो आगे आ जाओ, बोला नहीं जाए जोर से तो। चलो फिर माताएं, पीछे वाली माताओं को नहीं याद आ रहा कुछ मैं? अरे माताओं से पूछ रहा हूँ, हाँ ये बहुत अच्छी बात है, याद रखना। पीछे माताएं, मैं, अरे मैं घर की मालिक हूँ, मैं न होती तो तुम न होते, सारा बोझ सिर पे रख लेती हैं माताएं, सेवा में भी नहीं आती। आप तो आगे, नहीं तो माताएं सदा ही ये काम वो काम, हम तो बहुत बिजी हैं, मेरी जिम्मेदारी वो काम, बोझ बना रहता है। मैं घर की मालिक हूँ, अगर बच्चे की शादी हुई बहू आई तो सब अलमारियों में ताला बंद, माल तुम्हारा चाबी मेरी, माताएं करती है ऐसा नहीं, बस उसको मालिक बनाना चाहिए, डरती हैं ये कहीं मालिक बन गई तो सारी चाबी ले लेगी। ये ठीक बात है, बैलेंस रखना चाहिए, परंतु मैं ही मालिक हूँ। मालिक कौन? अपने घर का, जिसने बाबा को मालिक बना दिया, कैसे संभालेगा बाबा उसके घर? सोच सकते हैं ना, भगवान किसी के घर को संभालता हो, आनंद ही आनंद। और बोलो माताएं, मैं राइट हूँ। चलो ये बात सबसे सूक्ष्म बुद्धि की बात, हर व्यक्ति यही सोचता है मैं राइट हूँ, ये मैंपन का सबसे सूक्ष्म स्वरूप हो जाता है। इससे टकराव होता है, मनमुटाव होता है, परिवारों में भी होता है, पति पत्नी दोनों सोचेंगे मैं राइट हूँ, झंझट होते रहेंगे। हो सकता है हम राइट हों भी, तो भी हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा झुक कर चलना चाहिए, नम्रता से चलना चाहिए। आपने हम सबको बहुत सुंदर बात ये सिखा दी, सत्यता के साथ सभ्यता भी हो। संसार में जो लोग सत्य वाले होते हैं ना, मैं सत्य बोलता हूँ, इसलिए तुम्हें भी बोलना चाहिए, नहीं समस्या, दूसरे क्यों बोलेंगे? तो वो अलग तरह के मनुष्य, मुझे झूठ प्रिय नहीं, मुझे झूठ पसंद नहीं, फिर गुस्सा आ रहा है स्थिति बिगड़ रही है, टकराव हो रहे हैं, तुमने झूठ क्यों बोला, परेशानी हो रही है। तो मैं सत्य हूँ ये तो ठीक है, लेकिन तुम भी सत्य हो, ये हर एक की अपनी अपनी स्थिति है। तो सत्यता के साथ सभ्यता, गुड मैनर्स, बहुत अच्छे आचरण, बोलने का तरीका बहुत सुंदर, कि हमारी सत्यता में इतनी शक्ति हो कि कोई हमारे आगे असत्य बोल ही ना सके। हम क्यों परेशान हो, तुम्हें भी झूठ के नहीं बोलना है, हमेशा सत्य का वातावरण बना दें, सत्य को इतना शक्तिशाली बना दें कि असत्य लोप होने लगे और बोलो मैं नहीं, ये तो अच्छी बात है। नशा न हो ये चिड़िए के रूप में ना आ जाए, बोलो पीछे वाले भाई, पीछे में आगे वाले, मैं धनवान हूँ, हर गोविंद भी आ गया, बोलो तुम भी बोलो मैं धनवान हूँ। तो धन का नशा क्या कराता है, धन का दुरुपयोग कराता है। देख सकते हैं सभी, जितने भी धनवान लोग होंगे कई व्यसनों के अधीन होंगे, कई गरीब भी होते हैं, कई धनवान भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे मुझे मिलते हैं, कहते हैं हमारे पूरे परिवार में कोई व्यसन नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। और धन मनुष्य को अगर अभिमान के रूप में आ गया तो उसका दुरुपयोग अवश्य होता है और वो मनुष्य के उत्थान में बाधा बन जाता है। और आगे चलो, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं बलवान हूँ, मेरा परिवार इतना अच्छा है, मेरे 5 जवान लड़के हैं, तुमने क्या समझा है, सबको डर देते रहते हैं, ऐसे में क्या होता है, मनुष्य गलत काम करेगा, शक्तियों का दुरुपयोग करेगा, सबको मित्र नहीं शत्रु बनाएगा और इससे सब उसका खेल बिगड़ जाएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल उसे भी तो दूसरों की मदद की जरूरत पड़ेगी या नहीं। संसार में एक दो की मदद से ही खेल चलता है ना, लेकिन जिसमें ऐसा अभिमान आ जाता है तो दूसरों के सहयोग से वंचित हो जाते हैं। और बोलो मैं, हाथ उठा के आगे बोलो, क्या बोलो, मैं डिग्री धारी हूँ, डिग्री धारी माना मैंने PhD की है, मैंने 4 सब्जेक्ट में MA किया है, ये भी नशा है, तो अच्छी बात किया है, बहुत अच्छा, लेकिन इसका अहंकार न हो। हमने देखा कई थोड़े पढ़े लिखे बहुत बुद्धिमान, कई बहुत पढ़े लिखे बिल्कुल कम बुद्धिमान, मैंने कितने PhD वालों को देखा, उनके चेहरे से लगता ही नहीं कि इन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की हुई है। सच्ची बात है, एक PhD वाला हमारे यहाँ आया, उसमें उसके पास कितनी PhD थी हैरान होंगे आप, एक मास में ले ली थी क्या, 49 उसके परिचय में बताया गया। मैं भी सोच रहा था कि वो मालिक था, हो सकता है 6 मास में ले ली हो, या 2-4 PhD करने के बाद फटाफट मिलती हो, नियम होंगे यूनिवर्सिटीज के हमें पता नहीं, पर उसके बाद 49 PhD, लेकिन वो अध्यक्ष है, लेकिन उसके चेहरे से ऐसा नहीं लगता था वो बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि जिसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ज्ञान नहीं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, उसका ब्रेन विकसित अवस्था में आ जाता है, बहुत सॉलिड नहीं रहता, स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, ब्रेन में कंफ्यूजन बना रहता है, इसलिए बाबा ने सीधा सीधा सिंपल ज्ञान दिया, एक लाइन में बता दिया तुम आत्मा हो, इसके पीछे शास्त्र लिखे हुए बहुत सारे, तो भी किसी को पता चला तुम कौन हो, मन हो नहीं, बुद्धि हो नहीं, ये चलते हैं, तुम शरीर हो नहीं, ये क्या हो, जीव हो नहीं, आत्मा हो कैसी हो क्या हो, बहुत कंफ्यूजन चले, बाबा ने देखो कैसा सरल कर दिया, तो इस सरल ज्ञान ने हमें आनंदित कर दिया ना। यही ज्ञान अगर खोज से प्राप्त किया जाता तो खोज के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है उसकी सत्यता में खोज करने वालों को भी संपूर्ण विश्वास नहीं होता, उन्हें लगता कुछ और भी है, तो जरूर उसका सुख नहीं मिलता, सब जगह आप देख लो शास्त्रों के आधार पे बहुत खोज होती रही, लेकिन फिर भी मनुष्य अंधकार में ही रहा, और अंधकार का स्वरूप है विकार। अगर सत्य ज्ञान मनुष्य के पास होता तो क्या होता? अंधकार न होता, भटकन न होती, सत्य की खोज समाप्त हो गई होती। बाबा बहुत अच्छी बात बोलते हैं, अगर भारत में ज्ञान रतन होते तो भारत कंगाल नहीं। शास्त्रों में, अगर शास्त्रों में ज्ञान रतन होते तो भारत कंगाल न होता। देखो भगवान के कितने सुंदर महावाक्य हैं। चलो और मैं बुद्धिमान आ गया। पीछे वाले भाई बोलो, मैं कमजोर, ये भी ठीक बात है, ये भी मैं पन है, मैं बहुत कमजोर हूँ। ये निगेटिव रूप है उसका, इससे कमजोरी बढ़ती जाती है, निराशा बढ़ती है, मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बच्चे सुधरेंगे नहीं, मैं ये भी मैं है, मेरी बदनामी कर रहे हैं लोग, ये भी मैं है। ठीक बोला आपने। तो हम अपने अंदर छुपे हुए सूक्ष्म मैं पन पर दृष्टि डालें, किसी भी तरह का हो सकता, और भी कुछ हो सकते हैं। मैं बहुत गुणवान हूँ, ये भी हो जाता है। मैं बहुत अच्छा पुरुषार्थी हूँ, मेरा योग बहुत सुंदर है। ठीक है, सुंदर होना चाहिए, लेकिन उसका अगर अभिमान हो जाए तो वो विघनकारी बन जाता है। केवल योगी तो मैं ही हूँ, बाकी कोई नहीं, तो क्या होगा? ये अभिमान उसके योग को एक न एक दिन नष्ट कर देगा। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, सकार मुरली की है, राजयोग अर्थात मेरा कुछ भी नहीं। तो हम मेरे पे चलते हैं, पानी रखा भी देना, मेरे पे चलते हैं अब हम। लेकिन इस मैंपन को खत्म कैसे करेंगे? वो मेरे की बात होगी, मैं ठीक है, मैं चलो, मैंपन को खत्म करेंगे। मैं बुद्धिमान हूँ या मैं धनवान हूँ या मैं बलवान नहीं, और कुछ दो चीजें, जो कुछ हमारे पास है वो प्रभु देन है। समर्पण आगे की बात, प्रभु देन है वो। मेरे पास अगर बहुत अच्छी समझ है तो वो कहाँ से आई? मेरे पास अगर बहुत अच्छा ज्ञान है तो मेरे पास था क्या? बाबा से आया, लौकिक में ही। लोग बोलते तो ऐसे ही है ना, धन दिया श्री भगवान ने दिया, बच्चे दिए भगवान ने दिए, लेकिन यहाँ हम सत्य रूप में जानते हैं सब कुछ प्रभु देन है। इसको अपने अंदर समाएंगे तो ये मैंपन का अभिमान खत्म होता जाएगा। और जिसके पास जितना मैंपन का अभिमान खत्म होता है, निमित्त भाव आता है, ये सब चीजें उसके लिए उतनी ही सुखदायी हो जाती हैं। बात सभी को ध्यान देनी है। बुद्धि बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर बुद्धि है, लेकिन उसका अभिमान नहीं है तो बुद्धि योग को स्थिर करेगी, बुद्धि श्रेष्ठ निर्णय लेने में मदद करेगी, बुद्धि का तीसरा नेत्र स्वच्छ रहेगा, बुद्धि का पात्र सच विवेक से भरपूर होता जाएगा। ठीक है, धन प्रभु देन है तो धन सुख देगा, नहीं तो धन कैसे दुख देता है? देखो किसी ने बहुत पैसा कमाया हो लेकिन बीमारी लग गई हो और धन जा रहा हो बीमारियों में, तो एक बीमारी का दुख, दूसरा धन जाने का दुख होता है नहीं? तो अगर ये संकल्प है कि ये प्रभु देन है तो वो धन बहुत सुखदायी हो जाएगा। मैंने पहले भी आपको एक बात सुनाई है, यहाँ वो पक्की करनी है हमें, कि धन कभी स्थिर नहीं होता, धन है विनाशी। लेकिन धन के द्वारा अगर पुण्य कर्म कर दिए जाएं तो पुण्य कर्म हो जाएंगे आत्मा के साथ अविनाशी, बहुत समय चलेंगे। धन तो अभी है 10 साल तक, हो सकता है 10 साल के बाद ना रहे, घड़ी दिया जाए, एक जन्म में है हो सकता है दूसरे जन्म में ना रहे, लेकिन अगर धन के द्वारा पुण्य कर्म कर दिए जाएं, तो पुण्य कर्म सदा के लिए मनुष्य के साथी बन जाते हैं। ये बात सभी को ध्यान रखनी है। परिवार में भी अगर मैपन नहीं होगा, नहीं मेरा बहुत अच्छा परिवार है, मेरे 4 जवान बच्चे हैं, ये बहुत बुद्धिमान हैं, ये पढ़े लिखे हैं, इनके पास शक्ति बहुत है, धन बहुत है, तो परिवार सुख देगा, अन्यथा कष्ट देगा। तो मैपन को एक हम मिटाएंगे, सब कुछ प्रभु देन है, बल्कि हम महसूस कर सकते हैं कि श्रेष्ठ प्रसाद भी तब तक नहीं होता जब तक बाबा की नजर न पड़ जाए, जब तक उसकी शक्तियां न मिल जाएं। ठीक बात है ना, बोलियों में ज्ञान भी तो उसके द्वारा मिलता है, तो हम श्रेष्ठ प्रसाद कर रहे हैं। लेकिन योग भी हमारा तभी अच्छा लगता है बाबा की हमें सकास मिल जाए, दृष्टि मिल जाए, एक इससे दूसरा स्वमान से, मैं कौन, स्वमान जितना जितना बढ़ेगा, मैंपन का अभिमान उतना उतना घटेगा। स्वमान को बढ़ाते चले, और मैं आप सभी को 3 स्वमान याद दिलाना चाहूंगा, इसकी सब प्रैक्टिस करेंगे बहुत, और उसके अच्छे अनुभव होंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। बेफिक्र बादशाह बनना है, अब सबको बनना ही पड़ेगा। आने वाले समय में जो जितने अच्छे बेफिक्र बादशाह बनेंगे, उतना ही आनंदित रहेंगे। जैसे बाबा ने एक बार कहा, लोग चिल्लाएंगे, परेशान होंगे, हाय मरा, ये मरा, वो मरा, और तुम क्या कहोगे, अच्छी बात नहीं, ये कह दोगे तो लोग लड़ने आ जाएंगे। मुक्ति धाम चला गया, अपने घर गया, इनकी जन्म जन्म की इच्छा पूरी हो गई, मन शांत रहेगा ना इस संकल्प से, मेरे मर गए, बाबा ने बचाए नहीं, बाबा ने मदद नहीं किया, मेरे को भी उठा लिया, ये नहीं, मुक्ति हो गई। सभी माताएं इस बात पे खास ध्यान दे, वो मेरे बच्चे हैं, ये तो ठीक है, आपके बच्चे हैं, वो आपके रहेंगे, कोई ले नहीं जाएगा, लेकिन उनके कर्मों का खाता तो सबका अलग अलग है ना, वो तो मेरा नहीं है, वो उनका है, वो तो उनको चुक चुक करना ही है ना, इसलिए ज्ञान युक्त होकर साक्षी भाव भी अपनाना पड़ेगा, इसको बढ़ाना है सबको। मेरा, मेरे प्यादे बोलो, मेरा पहला तो यही माताओं का, क्या मेरा बच्चा, मेरा बाबा तो सबके बाद में आएगा, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे। माताएं दुखी हो जाती हैं, कहीं मेरा बच्चा बचपन से ही ज्ञान में चलता था, अब छोड़ दिया, इसे दुखी होने की जरूरत नहीं, फास्ट है ना सबका, उनको जितना भाग्य लेना था ले लिया, फिर आएंगे, परेशान नहीं होना है, मेरे बच्चे हैं, तो ये भावना निकाल कर क्या है, सब बाबा के बच्चे हैं, सब आत्माएं हैं, ये भावना स्ट्रॉन्ग करें। क्या विचार है माताओं का, सोच रही है माताएं, बड़ा भारी काम है, जिन बच्चों को जीवन भर पाला बाबा से कर दे उनको, बाबा अच्छा सब कुछ ले लेता है, माताएं बोल नहीं रही, मुस्कुरा रही बस, हाँ ठीक है ठीक है, बाबा के ही बच्चे हैं, मेरे बच्चे कहेंगे तो दुखी रहेंगे, बाबा के कहेंगे सुखी रहेंगे। दूसरा बोलो, मेरा देखो जिसको हम मेरा समझते हैं ना, उस पर हमारा अधिकार होता है। कई हमने लोग के बाप देखे जो स्थिति बहुत बिगाड़ लेते हैं कि मेरा बच्चा मेरी सुनता नहीं, रोज संघर्ष करो मैं, क्योंकि मेरा है इसलिए अधिकार से बात करते हैं ना, आदेश से बात करते हैं। और बच्चे आदेश मानते नहीं हैं, उनके अपने विचार होते हैं, उनकी स्वतंत्र अपनी इच्छाएं होती हैं, अपनी भावनाएं होती हैं। मेरेपन को हटाकर ये बाबा के हैं, तो भावनाओं से यदि बात करेंगे तो बच्चे आपकी बात सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे। लेकिन ये आपको मानना ही पड़ेगा कि वो सब कुछ हमारी नहीं सुनेंगे, ठीक है या नहीं? कोई भी किसी की सब कुछ नहीं सुना करता, कुछ उनके भी अपने विचार होते हैं ना। हम भी बाबा की कहाँ सुनते हैं, सारी सुनते थोड़ी सुनते हैं, थोड़ी अपनी सुन देते हैं। ये बाबा ने कहा तो सही, बस ठीक है करेंगे धीरे धीरे, क्या है जल्दी क्या है, बाबा तो रोज ही कहता है, बाबा तो कहता ही आ रहा है, अचानक कहते कहते 10 साल भी थे, अब तक तो कुछ हुआ नहीं। प्रश्न पूछते लोग कि अचानक का क्या मतलब है भाई? तो ऐसे मेरे बच्चे इसकी जगह बाबा के और सब आत्माएं हैं, और मेरा चलो मेरा, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा यज्ञ वाले बोले मेरा डिपार्टमेंट, माल सब प्रभु जी का, और मेरा बना गया हमें। तो मैंने आपको बताया जहाँ मेरा है वहाँ मैं नहीं, बाबा का वास नहीं होगा वहाँ। पक्का कर दो माताएं सभी, अब सब आ गई, मैं फिर सुना रहा हूँ। जैसे बाबा हमारे सामने खड़े होकर बोल रहे हैं, जहाँ मेरा मेरा है वहाँ मैं नहीं हूँ। सभी पक्का करो घरों में, अगर आप बाबा को लाना चाहते हैं तो मेरा मेरा निकाल देना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? सब कुछ तेरा। ये बहुत डीप भावना है, कहने से काम नहीं चलता। क्या मोटे से कह दे बाबा सब कुछ तेरा और फिर परेशान भी रहे? और मेरा बोलो, मेरा सेंटर, अब छोटे पे आ जाओ जरा, बिल्कुल यहाँ अपने में, मेरा शरीर, मेरी अलमारी, मेरी अटैची, मेरा ऑफिस, मेरा मोबाइल मोबाइल भी एक वंडरफुल चीज है ना आजकल, मेरी गाड़ी, मेरी बाइक, ये छोटे छोटे मैपन जिसमें भी आत्मा उलझ जाती, इसके लिए क्या संकल्प रखेंगे? और अच्छा संकल्प, बहुत सिंपल प्रैक्टिकल है। जब तक ये चीज हमारे पास है हम इन्हें यूज कर रहे हैं, ट्रेन का सुख ले रहे हैं, उनके द्वारा सुख दे रहे हैं, बाबा की सेवाएं कर रहे हैं या अपनी संतुष्टि कर रहे हैं। और जब ये नहीं रहेंगे ओके, नहीं है तो नहीं। ये संभव है ना एक दिन सब ये मोबाइल डब्बे बन जाए छोटे? आज बिजली न रहे मान लो, कोई अपने मोबाइल को चार्ज न करता है, फिर मोबाइल चाहे वो 50,000 का है काम करेगा? आज तेल मिलना बंद हो जाए, गाड़ियां खड़ी हैं बहुत सारी, क्या करेंगे गाड़ी? पैरों से चलाने चाहिए उनको, साइकिल की तरह। देखो पेट्रोल बढ़ता ही जा रहा है, बता रहे थे एक हफ्ते में 2 बार बढ़ा दिया, और थोड़ा थोड़ा बढ़ाते एक एक डेढ़ डेढ़ रूपए लोग शोर न मचाए, पहले 10 रूपए इकट्ठा बढ़ाते थे तो शोर मचता था, अब 2-3 मास में 10 रूपए बढ़ा देते हैं तो शांति से समझे 1 रूपया बढ़ाया बस। इतनी अच्छी पॉलिसी होती है ना गवर्नमेंट की। तो जितने भी साधन हमारे पास है संकल्प करने, केवल यूज करने के लिए, ये मेरे हैं, ये भावना अगर रहेगी तो वो मेरे नहीं होंगे, बड़ा कष्ट होगा। चाहे जिसके पास पैसा है, जो कुछ है, जो कर रहे हैं उसका सुख पा रहे हैं, उसको सेवाओं में लगा रहे हैं, तो वो नहीं होगा ओके ओम शांति, हम तो भी सुखी, चीजें हैं तो भी सुखी, नहीं है तो भी सुखी, ऐसी मन की स्थिति बनाने वाले आनंद में रहेंगे। और ये बनानी ही पड़ेगी, नहीं तो समय बनवाएगा, जब सब कुछ जाता देखेंगे सुख बनाएंगे तो स्थिति में आनंद नहीं रहेगा, दुखापन सुखापन आ जाएगा। उसे पुण्य कर्म करें, देखो सबसे बड़ा पुण्य तो है धन के द्वारा सेवा करना, धन के द्वारा सुख देना। जिनको इस लौकिक में लोग पेशेंट्स के लिए कई अच्छे काम करते हैं, मैं आपको एक सेंटर का सुनाऊं दिल्ली का, मुझे उसके समाचार सुनाए, बहुत ने किया होगा अपने ग्लोबल हॉस्पिटल के लिए आर्थिक मदद करने के लिए कहा गया सबको, तो सभी ने थोड़ा थोड़ा 3 रुपए 5 रुपए ऐसे रोज डालने शुरू किए। वहाँ सब भाई बहनों को क्या अनुभव हुआ कि जैसे ही हॉस्पिटल में वो पैसा आया, बीमारियों पे लगने वाला पैसा कम होने लगा, उन्हें ऐसा लगने लगा जो दवाइयों में पैसा जाता था वो बच गया। तो देखिए कितनी सूक्ष्म गति है, पैसा अब भी दवाइयों में ही जा रहा है लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के परोपकार के लिए, ये हो गया पुण्य। वही पैसा अपने लिए जा रहा तो पुण्य नहीं, वही पैसा दूसरों की सेवाओं में लगने लगा तो हमारा बच गया। बचत माना केवल पैसे की बचत नहीं, बीमारियों की बचत, कितनी बड़ी चीज हो गई, सुखी हो जाए मनुष्य, बीमारी न रहे, वही पैसा दूसरों की बीमारियों को समाप्त करने में लग जाए तो ये पुण्य हो गया। पैसे से आप ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं, यज्ञ की सेवाओं में लगाते हैं, कई प्रोग्राम हो रहे वहाँ सहयोग करते हैं, सबसे बड़े पुण्य तो ये है। पचलौकिक में बहुत सारे पुण्य होते हैं, गरीबों को मदद कर देते हैं, कभी भूखे हैं लोग, पानी नहीं है उसका इंतजाम करा देते हैं लोग, पढ़ने वालों को किताब दिलवा देते हैं, गरीबों की फीस दिलवा देते हैं, ये सब भी पुण्य है। और मेरा पुण्य चलो, मेरा बड़े बड़े मेरे भी तो है, मेरा सेंटर भी आपने बोला, इसे भी छोटा हो जाता है, मेरे स्टूडेंट, मेरी टीचर, एक दूसरे का पूरा अधिकार, इससे भी क्या होता है हमारी दिव्यता समाप्त हो जाती है, हमारा एक छोटा सा दायरा बन जाता है, हम उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। अगर हम संकल्प करें क्या मैं विश्व कल्याणकारी हूँ तो ये दायरा टूट जाएगा। सबसे अच्छा संकल्प ये है, हमारा जीवन तो सबके कल्याण के लिए है, जब हमने अपना जीवन प्रभु अर्पित कर दिया फिर भी अपने को बाउंड्री में बांध लिया हो तो प्रभु जी तो बंधे हुए नहीं है कहीं, सोचना है सभी को। अब हम सबके लिए हो गए ना विश्व कल्याणकारी, हमारी सकारात्मक भी संसार को जाएगी, हमारे पुण्य कर्मों का बल भी संसार को मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है, हम पूर्वज हैं, मास्टर बीज हैं, हमारे पुण्य कर्मों का बल संसार की सब आत्माओं को मिलता है, ये बाबा का महावाक्य है। इसलिए जो जितने पुण्य करे उसका परिणाम पदम गुना उसको प्राप्त हो जाता है, यहाँ कोई पुण्य करे उतने का उतना फल, और महान आत्माओं का पुण्य पदम गुना फल देने वाला है। सबसे बड़ा पुण्य बाबा के शब्दों में दूसरों को पवित्र बनाना, पवित्र बनाना, पवित्र बनने में सहयोग देना, ये भी माताओं की कन्याएं हैं तो उनसे उन्हें दबाव डाल के शादी करनी है, वो कहे ज्ञान में चलना है, माँ कहे शादी करनी है, लोग हमें क्या कहेंगे, पैसा नहीं लड़की की शादी के लिए, बहुत बातें हैं ना समाज में, लेकिन पवित्रता में सहयोग देना ये बहुत बड़ा पुण्य है। और किसी पवित्र आत्मा को अपवित्र बनने में बाध्य करना ये बहुत बड़ा पाप हो गया, इसे समझेंगे सभी इस बात को, कि कर्मों की गति समय बहुत गहन रूप से काम कर रही है। और आगे चले मेरा मेरा हाँ मेरी प्रॉपर्टी, मेरी धन संपत्ति, माताओं को भी रहता होगा, मेरे जेवर, मेरी साड़ियाँ, मेरी पंचायती, जैसे भाइयों का काम है ऐसे माताओं का भी होता है, मेरा अपन छोटा छोटा, और नहीं तो मेरा चश्मा ही बहुत सुंदर है। अब इस मैपन से हमें अपने को मुक्त करना है। मेरा कुछ भी नहीं, ऐसी समर्पणता बहुत गहरी है। यज्ञ में आ गए केवल ये समर्पणता नहीं है, ये तो समर्पणता का पहला कदम है। मेरा कुछ भी नहीं, जो गहन पुरुषार्थ करते हैं वो इस तरह चिंतन करेंगे, मेरा हर संकल्प बाबा को प्रिय हो, मेरा हर संकल्प विश्व के लिए कल्याणकारी हो, मेरा हर संकल्प ऐसा हो जिससे दूसरों को कुछ ना कुछ मिलता रहे, मेरा हर कर्म बाबा के लिए। बहुत शुभ संवाद। चाहे आप लौकिक कर्म भी करें, आपको संकल्प रखना है मेरा हर कर्म तुम्हारे लिए। तो सब समर्पणता हो जाए, तन मन धन बुद्धि चार चीजें मैं आठ लिखाता हूँ आपको, तन मन धन और बुद्धि, इनसे हम चर्चा कराए हैं। चौथा पांचवा देह के संबंध, बुद्धि पांचवा देह के संबंध, छठा हर कर्म, सातवा कर्मों का परिणाम वो भी समर्पित, और आठवा मन के बोझ चिंताएं जिम्मेदारियां। सुख संवाद होगी, समर्पण का मोटी बात नहीं रही, मन के सारे बोझ जिम्मेदारी चिंताएं, कर्मों का फल, कभी कर्म का फल हमें अच्छा नहीं मिलता, हम निराश हो जाते हैं, उदासी आती है, हमने बहुत मेहनत की लेकिन उस कर्म के फल को भी समर्पित, जब बहुत अच्छा मिला उसको भी समर्पित, मान मिला वो भी तेरा, अपमान मिला वो भी ऊपर, लेकिन कोई नहीं अपमान इफेक्ट नहीं करेगा। मन के बोझ जिसको बाबा ने कहा बाप को देकर बेफिक्र हो जाओ, फकूल ले लो, ऐसी समर्पणता जिसमें हमारे दिल से सच्चे दिल से आवाज निकलने लगे सब कुछ तेरा। आप सभी अपने घर को देखो, यहाँ से कुमार बैठे एक कमरा हो उसको देखो, सिलाई की मशीन हो, सिलाई में आए ना कहीं, सिलाई की मशीन है उसको देखो अपने घर में, संकल्प कर लो ये सब कुछ तेरा। रोज करना पड़ेगा कुछ दिन, ताकि उसकी भावना जो मैं बनती है वो निकल जाए, मैंने कमा के लाया है। मैं एक छोटी सी चीज भट्टियों में सिखाया करता हूँ, आप कमा कर पैसा लाए, भाई लोग सैलरी लाए अपनी, पहले उसे बाबा के आगे रख दो, तेरा, अब तेरे पैसे के द्वारा हमारी पालना होगी परिवार की। आप छोटी छोटी प्रैक्टिस करें, सब्जी भी लाए ना बाजार से, बाबा के आगे रखो तेरी, अब तुम्हारा दिया हुआ खाएंगे, कपड़े लाए रख दे बाबा के आगे तेरा, तेरा दिया हुआ पहनेंगे, छोटी छोटी प्रैक्टिस करें, स्कूल भोजन भी बाबा के आगे रख दो, वहीं कर दो सब तेरा, अब तेरा भोजन ब्रह्मा भोजन खाएंगे। छोटी छोटी प्रैक्टिस प्रारंभ करें आप अपने जीवन में, तो जो सूक्ष्म प्रैक्टिस है वो धीरे धीरे आप यही बढ़ जाएंगी, आगे हो जाएंगी। पसंद है सब कुछ, सब कुछ, दवाई भी खानी हो ना करके देखो, बाबा के आगे रखो, तुमको अर्पित, पहले तुम खाओ फिर हम खाएंगे, तुम खिलाओ हमें तो बाबा के हाथ से दवाई खाएंगे तुरंत काम करेगी, दवाई छोड़ा देगा पूरी। कि मैं तुम्हें दवाई थोड़ा ही खिलाऊंगा, अमृत पी देता हूँ, अमृत पी लो दवाई मुक्त हो जाओ। छोटी मनोरंजक प्रैक्टिस सभी अपने अपने घरों में, अपने अपने जीवन में प्रारंभ करें, तो सब कुछ तेरा, बीमारी भी तेरी, बच्चे भी तेरे। देखो एक माता का मैं अनुभव सुना था, बिलासपुर छत्तीसगढ़ की है, गाँव की माता भोली थी। पिछले साल उसके दो लड़के मरे, जवान दो ही थे बस, दो लड़की वो सेंटरों में है, दो लड़के थे 25-27 साल के, दोनों की मृत्यु हुई। उसकी दोनों लड़कियां सेंटर में बच्ची में आई तो मेरे को बताया, मैंने कहा तो तुम्हारी माँ का हाल तो बहुत बेकार बिगड़ गया होगा। कहा नहीं, उसकी अवस्था बहुत अच्छी रही है। मैंने कहा तो उसको मेरे से मिलाना। अगले दिन वो भट्टी में आ गई, मिलाया उसको, मैंने उसको देखा, बेचारी के चेहरे पे था तो सही, देखो दो बच्चे जवान किसी के जाए कोई न बचे, लेकिन उसने अपनी स्थिति को संभाल के रखा। मैंने उससे पूछा कैसे आपने अपनी स्थिति को संभाला, गांव की माता ने उत्तर दिया, पति की माता ने ही कहा, मैं पहले ही कहती थी बाबा दोनों बच्चे आपके हैं, अब वो बाबा के पास चले गए, अब भी उसके ही हैं। कितनी गहरी बात उस माता ने धारण रखी अपने जीवन में, क्योंकि तेरे थे तेरे पास चले गए, छोटी बात नहीं है, कहने से काम नहीं चलेगा। उन सपने को भी संभाल ले, लेकिन दूसरे लोग जब बहुत बुरा बुरा बोलते हैं बाबा के लिए बोलते हैं, है ये कैसे थे भगवान हमें मिला, देखा सब चले गए इनके। कई ऐसा बोलते हैं ये कहते विनाश होगा, विनाश तो नहीं हुआ, इनका ही विनाश हो गया। बोलने वाले तो छोड़ते नहीं ना, उनके पास भी बहुत अच्छे पॉइंट्स होते हैं बोलने के। ऐसे में अपनी स्थिति को संभाल के रखना ये बहुत बड़ी बहादुरी भी है माताओं की, और ये बहुत बड़ा ज्ञान और विश्वास भी है बाबा में। ज्ञान भी सूक्ष्म है ना, समर्पण भाव है, और बाबा में बहुत बड़ा विश्वास भी है। नहीं तो माताओं को समस्या होती है, अब हमें कौन संभालेगा, लड़की दोनों सेंटर में, लड़के दोनों गए, पति भी नहीं है, मैं अकेली, अब मेरा क्या होगा। लेकिन जिनको भगवान संभाल रहा हो, मनुष्य से अच्छा संभालेगा ना वो, तो जिनको भगवान संभाल रहा हो उनको ये भय भी नहीं होना चाहिए। तो समर्पण ऐसी करने, मेरा पूरा जीवन तुम्हारे हाथों में, क्या विचार है, ठीक है। जैसे हम बाबा की गोद में पहुंच गए, गोद प्रैक्टिस करने लगे, सोते हुए तुम्हारी गोद में है, मेरा संपूर्ण जीवन, मेरा ये परिवार तुम्हारे हवाले, बहुत सच्चे मन से सब कुछ उसके हवाले कर दो। लेकिन जरूरत बहुत होती है किस चीज की, विश्वास, और ये विश्वास बढ़ाना है, नहीं तो बाबा के हाथों में सौंपने के बाद भी चिंता रहती है, कहाँ से खाएंगे, बीमार हो गए कौन पूछेगा, पैसा नहीं दवाई कहाँ से आएंगी। लेकिन अगर बाबा में विश्वास होगा तो बाबा सब कुछ करता है, किसी को निमित्त बनाकर भी करता है। ऐसे अनुभव बहुत माताओं के ही हैं, जिनके पास पैसा नहीं, महाराज एक माता का अनुभव बहुत अच्छा है, टाइम हो गया है, 70,000 का बिल था, पैसा नहीं था, खाली छुट्टी होनी है हॉस्पिटल से, 70,000 देना है, एक पैसा नहीं है, और बाबा ने क्या चमत्कार किया, कोई व्यक्ति आया, माता जी को साथ ले गया, उसका बिल पे किया और वो चला गया, पता नहीं कौन था। वंडरफुल बात हुई है, उसकी लड़की ने मुझे सारा डिटेल अनुभव सुनाया, आखिर देखो हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो बाबा में संपूर्ण विश्वास। ओम शांति।